نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2009 کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے اور اس نعمت پہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جو اس نے ہمیں نصیب کی. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن آج نہیں ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے. اس طرح ہم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو موقع آج ہمیں ملا ہے یہ دوبارہ ملے گا بھی کہ نہیں، اور جس سفر کو ہم نے شروع کیا ہے کیا ہم اس کو پورا کر بھی پائیں گے کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی امیدیں رکھتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس سفر کو پورا کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب وہ دن بھی دیکھیں کہ جس دن ہم قرآن پاک کے اس سفر کو مکمل کر چکے ہوں اور کم از کم ایک حجت تو ہماری زندگیوں میں قائم ہو جائے کہ اللہ ہم نے اس زندگی میں تیری کتاب کو سمجھنے کی ایک کوشش تو کی تھی، چاہے وہ مختصر ہی نوعیت کی تھی. براہ راست پارے پہ جانے سے پہلے دو تین باتیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو زیادہ بہترین طریقے سے گزارنے کا سبب بنیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلام کو سننے سے پہلے دل کے اندر اس بات کا یقین رکھ لیں کہ یہ رب کا پیغام ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی نقص سے پاک ہے. جب دل کے اندر یقین لے کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جذب کی کیفیت بڑھ جائے گی. دوسری چیز جو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے سوچنی ہے وہ کیا ہے کہ اس وقت جہاں بیٹھتے ہی ہم نے اپنے ذہنوں کو پچھلی تمام معلومات سے خالی کر دینا ہے. اللہ کے کلام کو دل کی بالکل خالی زمین پہ محسوس کرنا ہے. پہلے سے معلومات، پہلے کی یاداشتیں یا پہلے سے کچھ سنی ہوئی باتیں وہ بھی یاد رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت ہم نے اس کو بالکل ایسے سننا ہے کہ جیسے مجھے کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ اللہ کا کلام سمجھ ہی تب آتا ہے جب ہم اس کو خالی ذہن سے سیکھتے ہیں. تیسری چیز، آج ہی سے نیت کر لیں کہ جو سنوں گی اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق اس پہ عمل بھی کروں گی، گویا کہ آپ کہہ لیں کہ اس کو امام بناؤں گی، یہ میری زندگی کا امام بنے گا، یہ میرا قبلہ بنے گا، اس کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی. اس کے لیے پریکٹیکلی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جس دن جو بات ہمارے سبق میں آئے فوراً اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے نیت کر لیا کریں کہ اب اس پہ میں عمل کیسے کروں گی. اللہ کے راستے میں دینے کی آیت آتی ہے نا، تو سوچ لیں 50 سینس، 25 سینس، 10 سینس، 5 سینس میں ضرور اللہ کے راستے میں دے دوں گی کہیں بھی، تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو عمل والے بن کے اٹھیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے قرآن کا علم اور اس کا عمل ساتھ ساتھ کیا. انشاءاللہ یہ صرف علم کا سفر نہیں ہوگا، عمل کا سفر بھی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس سفر کو آسان کریں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। इन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, इनकी नहीं जिन पर गजब किया गया, और ना गुमराहों की। आमीन। ये थी सूरत अल-फातिहा। इसका टॉपिक है रहमत का दरवाज़ा खुलता है। सूरत फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। तरतीब के एतबार से 5वें नंबर की वही है। कुरान पाक की सबसे पहली मुकम्मल सूरत है। इससे पहले सूरत अलक, सूरत मुज़म्मिल, सूरत मुद्दस्सर की कुछ आयात नाजिल हो चुकी थीं, लेकिन सूरत अल-फातिहा पूरी की पूरी नाजिल हुई। फातिहा का मानी होता है खोलने वाली, तो गोया कि आज आपकी और मेरी ज़िंदगी का भी एक अहम बाब खुलने वाला है, एक दरवाज़ा खुलने वाला है। हम वहाँ से गुजर के एक ऐसी मंजिल पे चढ़ने वाले हैं कि जो सिराते मुस्तकीम को जाती है और जिसका दूसरा किनारा जन्नत और रब की रज़ा की तरफ खुलता है। और एक बंदे मोमिन की ज़िंदगी में यही टारगेट होता है कि अल्लाह इस दुनिया में ज़िंदगी वैसी बसर करूँ जैसी तू चाहता है, और जब मैं यहाँ से निकलूँ तो बस फिर मैं तेरी रज़ा को पा चुका हूँ। आप देखेंगे कि कुरान पाक का पहला लफ्ज़ सूरत फातिहा में जो आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह की तारीफ़। अल्हम्द के दो मानी होते हैं, शुक्र और तारीफ। तो क्या हुआ, सारे शुक्र सारी तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदा बनाना चाहता है, और शुक्रगुजार दिल ही वो बर्तन है जो रब की रहमतों को समेट लेता है। वहाँ से फिर खून की तरह सारे जिस्म में वो शुक्र सिरायत करते करते जिस्म के एक एक उज्व से शुक्र बिल जवारेह की सूरत में निकलता है। हमने इस वक्त किस बात पे शुक्र करना है? इस बात पे शुक्र करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने तेरे कलाम को खोला। ये मामूली चीज़ नहीं है, ये वो नहीं है जिसको हमने सिर्फ कुरान कहा। ये तो वो चीज़ है जो इंसानियत के नाम रब का पैगाम थी। ये वो मोड ऑफ लाइफ है जो दुनिया में भी इंसानों को तरक्की दिलवाता है और आखिरत में भी जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा। तो शुक्र असल बात यह है कि इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। शुक्र करने वाला जो है वो सब कुछ पा लेता है जो उसको मतलूब है। इससे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, अल्लाह के नाम से शुरू किया। अल्लाह के नबी का भी यही हुक्म है, और कुरान पाक में अमली तौर पे भी ये पता चल गया कि कोई काम कोई बात शुरू करो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्यों? इसलिए कि इंसान जब अपने किसी काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करता है तो असल में वो अल्लाह ताला को ये बात बताता है कि मेरी ज़िंदगी का हर काम तेरे नाम से शुरू होगा, और तू अपनी रहमतें लेके आ जा, तू मुझे अपनी रहमतों की छाया में ले ले और मेरे इस काम को मुकम्मल तौर पर कर दे। और अगर मैं ये बिस्मिल्लाह ना पढूं तो गोया कि इंसान अपनी ज़ुबान से ये कहता है कि अल्लाह मेरे इस काम को अबतर कर दे, इसको बुरा कर दे, इसको ख़राब कर दे। अल्लाह की ज़ात ने हमें क्या कुछ दिया, सोचिए तो सही। वो ज़ात जिसकी नेमतें लेते लेते आज यहाँ तक पहुँचे, उसने सिर्फ़ हमारी ज़रूरियात को ही पूरा नहीं किया, उसने हमारी ख्वाहिशात को भी पूरा किया। उसने प्यास दी तो साथ पानी भी दिया, उसने नींद दी तो साथ ही साथ उसने फिर आरामदेह बिस्तर भी दे दिए। सिर्फ़ एक नज़र शुक्र भरी डालते जाइए, आपका दिल जो है वो अल्लाह की मोहब्बत से भरता जाएगा। शुक्र जो है वो ज़िंदगी में शिरीनी पैदा करता है, ज़िंदगी मीठी हो जाती है, जैसे शक्कर के डालने से आपकी चाय मीठी हो जाती है। और आप देखिए, शुक्र शुक्र है, शक्कर कर लें तो चीनी बन गई, शुक्र कर लें तो इंग्लिश में मीठा हो गया, शुगर कर लें तो इंग्लिश में। क्या आपको इन सब का रब नहीं मिल रहा? कड़वी चाय को चीनी मीठा करती है, इस तरह ज़िंदगी की तलखियों को शुक्र मीठा कर देता है, नेमतों को पाना आसान हो जाता है, और मुश्किलों और आजमाइशों के दिन आराम से गुजरने लगते हैं, फिर मसाइब झेलना आसान हो जाते हैं। जो मतलूब है वो शुक्र है। नाशुक्रा इंसान दुनिया का सबसे झूठा इंसान है। जो बंदा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं, जो अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी नहीं, वो कहाँ से आएगा? तो लिहाजा अपनी तमाम नेमतों को याद करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हर सांस के साथ अगर दो दफ़ा भी शुक्र कहेंगे ना, तो सिर्फ सांस के अंदर जाने और सांस के बाहर आने का हक अदा नहीं होगा, बाकी नेमतों को तो कहाँ कहेंगे। और शुक्र असल में एक पॉजिटिव अप्रोच का नाम है कि अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ, जो तूने मुझे दिया मैं उसके काबिल नहीं थी, और जो मुझे नहीं मिला ये तेरा फ़ैसला है, मैं तेरे इस फ़ैसले पर राज़ी हूँ। हम अपनी ज़िंदगियों में अगर इस रवैये को अपना लें तो हमारी अजीरन ज़िंदगियां खुशगवार ज़िंदगियों में बदल जाएं, हमारी सुलगती हुई रातें पुरसकून रातों में बदल जाएं। लेकिन शैतान ने चूँकि ख़ुद भी नाशुक्री की, वो हमें भी नाशुक्रा बनाना चाहता है। वो इंसान जो अल्लाह को ना माने और गैर की तरफ जाए वो नाशुक्रा है। तो हम शुक्र करते हुए अल्लाह की किताब को शुरू करते हैं, और अगर अलहम का दूसरा माना तारीफ़ ले लें तो फिर तो क्या है, सारी तारीफ़ें रब की हैं। क्यों रब की तारीफ़ें? इसलिए कि उसने सब कुछ बनाया। किसी के पास भी कोई नेमत देखेंगे ना तो फौरन तारीफ़ अल्लाह की निकलेगी। इससे क्या होगा, हसद पैदा नहीं होगा, जलन और कुड़न पैदा नहीं होगी। फौरन कहेंगे कि जो उसको दे सकता है क्या वो मुझे नहीं दे सकता। फिर आपके दिल से सारी गलत चीज़ें निकल जाएंगी और आप अल्लाह ताला की नेमतों को देखेंगे। तो साथ ही जब आप अर्रहमान अर्रहीम को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम है। इंसान ज़रा लाडला होने लगता है, एक लाडले बच्चे की तरह, कोई बात नहीं कुछ भी कर लूँ, मेरा रब बड़ा रहमान रहीम है, वो मुझे माफ़ कर देगा। साथ ही मालिक यौमिद्दीन आ गया कि देखो बिगड़ना नहीं, आगे मालिक यौमिद्दीन की कैद भी है, वो बदले के दिन तुम्हें बताएगा। और फिर उसके बाद इंसान की सोच सीधी होने लगती है, फिर वो इंजाम को सामने रख कर काम करना शुरू करता है। और जब उसको अल्लाह की मारुफत का पता चलता है, अल्लाह की बड़ाई का पता चलता है, अपने छोटे होने का एहसास होता है, तो या कना बुदू व या कनस्ताइन, फिर अपने आप को अपने हाल पे ले आता है कि अल्लाह मैं बंदा, तू मालिक, तू आका मैं तेरा गुलाम, तू राजिक मैं मरजूक, तू देने वाला मैं लेने वाला, मेरा तो औकात, मेरी औकात तो बस बंदगी की है। इन दो लफ्ज़ों में, या का नाबुदू और या का नस्ताइन, में दावा भी है और वादा भी है। ये जो लफ्ज़ नाबुदू है ये मुजारे का सीगा होता है, यानी ये एक लफ्ज़ मुस्तकबिल का माना भी देता है और हाल का भी देता है। हाल का माना लेते हैं तो हम दावा कर रहे हैं कि अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ और सिर्फ तुझसे मदद मांगती हूँ, और अगर मुस्तकबिल के लिए हम इसको इस्तेमाल करें तो ये एक वादा बन जाता है कि अल्लाह आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद मेरी जबीन झुकेगी तो तेरे सामने झुकेगी। और फिर इंसान की इबादत खूबसूरत होने लगती है, तशक्कुर के जज्बात आने लगते हैं, फिर इंसान ये ख्वाहिश करता है कि अल्लाह ताला तू बता मैं तेरे लिए क्या करूँ, फिर इंसान झुकना चाहता है, फिर वो टूटना चाहता है, फिर उसको अपना रब सबसे प्यारा हो जाता है, फिर वो बंदगी के मुकाम पर आने लगता है। और इबादत के अंदर जहाँ खौफ भी है वहाँ उम्मीद भी है, वहाँ मोहब्बत भी है, क्योंकि रब बड़ा रहमान है। वो इस अंदेशे में जीता है कि मेरा रब मेरे से नाराज़ ना हो जाए। वो ये नहीं कहता छोटी सी बात है, खैर है ना, सब कर रहे हैं, नहीं, वो कहता है नहीं, वो बड़ी ज़ात मेरी छोटी से नाराज़ ना हो जाए। और इस तरह इंसान फिर अल्लाह ताला के साथ वादे करते 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 आगे से आगे जाता है, और फिर इहदिनस्सिरातलमुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, दुआ मांग रहा है अब इंसान। जब उसको पता चला मैं छोटा हूँ, लेना रब से ही है, तो फिर अब क्या है कि अल्लाह तू मुझे, मांगूंगा तो बहुत कुछ, लेकिन तू मुझे पहले सिराते मुस्तकीम का रास्ता दे। और ये रास्ता कौन सा है, जो दुनिया की तरक्कियों और इज्जतों और मोहब्बतों से गुजर के कल जन्नत के अंदर इंसान को दाखिल कर दे। ऐसा इंसान जब अल्लाह ताला को देखता है उसकी कायनात में फैली हुई निशानियों की रोशनी में, तो उसको यकीन आने लगता है कि मेरा रब जिसने सूरज चांद सितारों को रास्ता दिखाया, सूरज को बताया तुम दिन में आना, चांद को बताया तुम रात को आना, जो गर्मी के बाद सर्दी को और सर्दी के बाद गर्मी को, रात के बाद दिन को और दिन के बाद रात को लाता है, फिर ऐसा बंदा उसी रब से कहता है अल्लाह तू मुझे भी बता मैं क्या करूँ। वो सारी ज़िंदगी अल्लाह से पूछते पूछते गुजार देता है कि अल्लाह तू किससे राज़ी है, तू किस चीज़ से राज़ी है, तू बता कि मैं क्या करूँ, मुझे ज़िंदगी तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारनी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा बंदा फिर इस मुकाम पे आ जाता है कि रब से पूछते हुए ज़िंदगी गुजारता है, वो लोगों को देख के नहीं जीता, वो रब से पूछ के जीता है। उसको पता है कि मेरी आखिरी मुलाकात मेरे रब से होनी है, और सिराते मुस्तकीम का मांगना ऐसे ही है जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहें कि अल्लाह तू बता मैं वक्त कहाँ गुजारूँ, अल्लाह बता मैं क्या करूँ, अल्लाह बता मेरा माल कहाँ लगे, अल्लाह तू बता मेरी जवानी कहाँ लगे। उसकी खामोश बातें अपने रब के साथ होती हैं, और इस तरह बंदे का रब के साथ ताल्लुक़ जुड़ता है। एक आसमान पर रहने वाली ज़ात, एक ज़र्रे से भी छोटी मखलूक के साथ अल्लाह ताला का ताल्लुक़ जुड़ता है। और दिन में 17 बार नमाज़ों में इसको अल्लाह ताला ने हमारे रखा, इसके साथ अगर आप पेज नंबर 4 और 5 में अगर आप देखेंगे तो कुछ मसाइल लिखे गए हैं सूरत अल फातिहा के मुतालिक, इंशाल्लाह आप बाद में पढ़ेंगे। और उसमें से एक छोटी सी बात तो यही है कि नमाज नहीं होती जब तक कि सूरत फातिहा नहीं पढ़ी जाती। लेकिन हमने अभी तक जिंदगी में इतनी दफा सूरत फातिहा पढ़ ली, इसका असर हमारी जिंदगी पे कितना आया और क्या हुआ, इसको इंशाल्लाह हमने आहिस्ता आहिस्ता देखना है ताकि हम अपनी सूरत फातिहा को जिंदा कर सकें। फिर इंसान तड़प के कहता है कि अल्लाह गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, रास्ता तो मांगा है, हिदायत तो मांगी है, लेकिन सिरात अल्लज़ीना अनअमता, इनाम वालों का रास्ता दिखा, यानी कुरान तो थेरी बताएगा, इसमें तो रिटन बातें पता चलेंगी, ये करो और वो ना करो, लेकिन अमल के लिए कुछ लोगों के नक्शे कदम भी दिखा जिन पे हम चल सकें, और वो अल्लाह के नबियों के रास्ते, वो सिद्दीकीन और शुहदा के और सालेहीन के रास्ते। अल्लाह तू मुझे बता कि मैं कैसे चलूँ, हाँ मखदूब और दुआलीन के अंदर ना करना। मखदूब कौन होते हैं? हद से ज़्यादा सख्ती करने वाले, जो दीन को इतना सख्त कर लें कि लोगों के लिए वो नाकाबले बर्दाश्त हो जाए। अपनी ज़ात पे बात आए तो मामलों को नरम करने वाले, और लोगों के लिए बात करने वाली हो तो इतना सख्त मसला बता दें, इतना सख्त फतवा दे दें कि बेचारा जो भी बच्चे की तरह लुढ़कता वो हिदायत की तरफ आ रहा था उसकी चीखें निकल जाएं और वो उस मसले का बोझ बर्दाश्त ना कर सके। तो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि अल्लाह तो हमें ऐसे लोगों में ना करना। और दुआलीन कौन है? हद से ज़्यादा नरमी करने वाले। यही सिफात अपने वक्त में यहूद और नसारा की थी। यहूद ने दीन में सख्ती की और दीन को मुश्किल कर लिया। नसारा इतने मोहब्बत में आगे बढ़े, गलूब किया कि जो मर्जी करते रहो, अल्लाह का इकलौता बेटा आएगा और तुम्हें बख्शवा लेगा। ये दोनों एक्सट्रीम से हट के हम कहते हैं सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, अहले इनाम वाले लोगों का रास्ता में था, हमें उनका रास्ता दे कि जो वाकई तेरे रास्ते पे चले। अब देखिए कि हिदायत जो है ना, ये दुनिया की सबसे कीमती नेमत है, ये एक किस्म का प्रिजर्वेटिव है आपकी नेमतों को महफूज करने का। हिदायत की नेमत के साथ आपको माल मिल जाए ना, तो वो माल आपके लिए नेमत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माल जो है वो रजुलुन सालेह, उनको कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि उसको पता है मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, वो उससे अच्छे इस्तेमाल करता है। आपको औलाद मिली, आपके पास साथ हिदायत थी कि इस बच्चे की तरबियत कैसी करनी है, इसको कैसे पालना है, वो बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगा। अल्लाह ने आपको घर दिया, अल्लाह की नेमत थी, साथ हिदायत भी थी कि इस घर में कैसे रहना है, क्या चीज़ें हों क्या ना हों, वो हिदायत आपकी उस नेमत को बढ़ाने का सबब बनेगी। अल्लाह ताला कहते हैं लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अब हमने अपने लिए कुछ नियत करनी है कि क्या वाकई मेरी ज़िंदगी में शुक्र है, क्या वाकई मैं अल्लाह की मतलूब बंदी बनना चाहती हूँ। और अगर आप ये कह देना कि अल्लाह को जो बंदा मतलूब है ना, कैसा बंदा हो, क्या उसके एहसास और क्या कैफियत हों, तो सूरत फातिहा उस बंदे मोमिन की एक छोटी तस्वीर है और कुरान पाक इसकी एक बड़ी तस्वीर है। सूरत फातिहा एक पूरे ईमान वाले की ज़िंदगी का हिसार करती है, और पूरा कुरान पाक सूरत फातिहा के मज़ामीन को खोल के बयान करता है।